ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। भट्टी और ज्ञान सरोवर, जहां के वातावरण में स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत बहुत ज्यादा समाई हुई है, ये केवल कहने की बात नहीं, आने वाले जनोन्वी के भी आते रहे थे, वो सब भी इस बात की बहुत चर्चा करते थे। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक आए, यहां तनाव लेकर आए। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ समय पहले ही हमने किसी को बुलाया, बहुत परेशान थे वैज्ञानिक बड़े, चाय पीने लगे। मैंने देखा देर हो रही, आए नहीं, कहाँ रह गए। मैं गया, चाय पी रहे थे। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, कहता यहाँ क्या है, अभी तो मुझे 10 मिनट हुए हैं, चित्त शांत हो गया है। एक नहीं, हजारों अनुभव हैं। तो ऐसे स्थान पर जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ है, सभी को स्वयं से बातें करनी है, जो दीदी जी ने आपको कहा, वो केवल ड्रेस आपने सुन लिया, आपको गिफ्ट मिल गई। मैं उसका एक दूसरा सुंदर रूप आपके सामने रख रहा हूं। दीदी बोल रही थी तो मुझे याद आ गई अव्यक्त बाबा की बात। यहां आकर बहुत गहराई से अपने से बातें करनी है, अपने से बातें। युगों से हम दूसरों से बातें कर रहे हैं, अब भगवान से बातें करेंगे, अपने से बातें करेंगे। और क्या बातें करेंगे, मैं संगम युग के अगले समय को 10 साल मान लें कैसे बिताना चाहती हूं, चाहता हूं, एक सुंदर प्लानिंग मन में चले। यहां बहुत अच्छा होगा, वो तो होगा, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहे, महत्व इसका है जो दीदी ने कहा, जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे, बदल कर जाएंगे। कैसा चाहते हैं हम अपने को देखना, और जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन सभी को मैं एक चिंतन और देता हूं। आने वाले समय में, वो भी मुझे दीदी की बात से याद आया, आने वाले समय में मुझे अपना पार्ट क्या प्ले करना है संसार के लिए, क्योंकि समय कुछ और आता जाएगा। ऐसा समय आएगा जिसकी कल्पनाएं भी नहीं है, न नेताओं के मन में, न वैज्ञानिकों के, न हम सबके। और ये उतार चढ़ाव होंगे, जैसे कोरोना आया था फुल पीक, अभी हल्का हो गया है, पुरुषार्थ का समय मिला है, फिर बड़ी गड़बड़ होगी, फिर पुरुषार्थ का समय मिलेगा, तो जय जयकार भी होगी। और जो दीदी ने हिंट दिया बाबा का, और इस देव देवियों का साक्षात्कार भी कराना है हमें, साक्षात्कार करने वाले तो लाखों होंगे, कराने वाले थोड़े होंगे। आप सोच लें, हमें करने वाला बनना है या कराने वाला, सोचेंगे। कराएंगे कौन, बाबा की मुरली से। ऐसी बातें मुरलियों में आती हैं, सभी लोग कैच नहीं कर पाते। साकार मुरली का महावाक्य है, जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाएंगी वही दूसरों को साक्षात्कार कराएंगी। बिल्कुल क्लियर। तो हम सभी एक विजन बनाए, चित्र बनाए, मुझे अगले ऐसे विकराल काल में ये पाठ बजाना है। क्या बजाना है? नहीं, ये बजाना है। दुखी आत्माएं बहुत आएंगी, मुझे सबको वाइब्रेशंस देकर दुखों से मुक्त करना है। मानसिक रूप से परेशान, चिंतित, भयभीत मनुष्य आत्माओं को मुझे शक्तियों के वाइब्रेशंस देकर राहत देनी है। अपना पाठ निश्चित करें अभी से, अपने लिए भी जिए, परिवार के लिए भी जिए। आप सब जी रहे हैं अपने लिए और परिवार के लिए। हर समय तेजी से आता जाएगा जब हमें संसार के लिए जीना होगा, और वही संसार में महान होंगे, हीरो एक्टर होंगे जो संसार के लिए जिएंगे। उन्हें कुछ कमी तो होगी नहीं, दाताओं को कोई कमी नहीं होती है। तो बहुत गहन चिंतन करेंगे, अपने से बात करेंगे, मुझे संगम युग के ये सुख भरे दिन कैसे बिताने हैं। ऐसा नहीं हो उलझनों में बीतते रहें, छोटी परेशानी और चिंताओं में बीतते रहें। जो कुछ हो रहा है आजकल, घरों के झंझटों में बीतते रहें। पहले अपनी चिंता थी, फिर पति की चिंता या पत्नी की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, और उसके आगे बोलो माताओं, बच्चों के बच्चों की चिंता बढ़ती जाती है। अपने को मुक्त करना अपने हाथ में। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, मैं सिखाता हूं कई माताओं को। माताएं कहती हैं, बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, लड़की मेरी नहीं मानती, मैं बहुत दुखी हूं। मैं एक ही बात कहता हूं, मैंने कहा मेरी बात मानकर 3 मास के लिए उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो जरा, कि ये मेरी बात माने, मुक्त करो इस संकल्प से, स्वतंत्र करो उन्हें, देखो क्या रिजल्ट होता है, और उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दो, बदल जाता है खेल। अगर हम उलझ गए तो उलझ गए, और एक बार जो मनुष्य ज्यादा उलझ गया उसको उससे निकलना सहज काम नहीं होता है, कठिन हो जाता है। इसलिए यहां आकर चिंतन करेंगे सभी, क्लासेस तो होंगी, आप सुनते रहेंगे, पर गहन चिंतन, अपने से बातें करना, कहीं किसी एक व्यक्ति के कारण, सुन ले ध्यान से, कहीं परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण हम अपना अगला कल्प खराब तो नहीं कर रहे हैं। एक एक है घरों में, ज्यादा नहीं होते, एक ही होता है, वो आपको कुछ नहीं करने देता, परेशानियों का कारण बना रहता है, सवेरे उठने नहीं देगी वो आत्मा, योग नहीं करने देगी। कई माताओं को मैं बहुत हंसा करता हूं, बच्चों की इच्छाएं तो सभी रखते हैं, बच्चों ने जन्म लिया, बच्चे ऐसे आए कि उन्हें देख देख कर मां रोती रहती है, सारा सुख छीन लिया। कहां बच्चों के जन्म से सुख मिलता है और कहां बच्चों ने जन्म लेते ही सुख छीन लिया। ये हो रहा है और आगे बहुत बढ़ेगा। क्यों? मैं आपको राज बता देता हूं जो बाबा ने बताया हुआ है, उसमें भी अपने को संभालना है, और वो राज है, मनुष्य के बहुत सारे विकर्म जन्म लेने में और मृत्यु में नष्ट होते हैं, सजाएं होती हैं भारी। तो जिनके बहुत पाप कर्म है उनकी जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी जन्म होंगे, तो अगली मार बच्चों पर पड़ेगी। उसकी मार उनके माँ बाप पर आएगी। मानसिक रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने को बहुत खुश रखना है, सहज भाव से जीवन जीना है। मैं ये दो धारणाएं आपके सामने रख रहा हूं, क्लासेज इन पे भी कोई ना कोई कराएंगे, क्योंकि मैं तो 3 दिन नीचे रहूंगा। सहज भाव का अर्थ होता है इंग्लिश में जिसे इजी गोइंग नेचर कहते हैं, कि जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है वही होगा, कोई उसे चेंज नहीं कर पाएगा। बाबा के महावाक्य की याद दिला दूं, श्री बाबा डायरेक्ट बोले, मेरे प्लान के आगे संसार में किसी का प्लान नहीं चलेगा। अब सारा कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले लिया है, भले ही वो कहे ड्रामा है, ड्रामा को पीछे कर दे थोड़ा, सब कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए जो कुछ होगा, अंडरलाइन कर लें अभी से, उसे स्वीकार करना ही है। स्वीकार करना, इसको अपना जीवन बना लो। स्वीकार करना, कामनाएं रखेंगे बहुत, ऐसे ना हो, ये क्यों हो रहा है, बाबा मदद नहीं कर रहा है, बाबा ने तो ये कहा था, वो कहा था, बाबा ने कह दिया था, अब मैं साथी हूं, परीक्षाओं के समय हो जाऊंगा साक्षी। ये संपूर्ण सत्य है। इसलिए हमारी अपनी स्थिति, हमारे पुण्य कर्म, हमारा सेवाओं में दिया गया सहयोग, वही हमारा सच्चा साथी होगा, और बाबा भी उनका साथी होगा जिन्होंने लंबा काल उसको अपना साथी बनाया है, और जिन्होंने उसकी नहीं सुनी, मुरलियों में आता रहता है, अभी भी सुनेंगे 2-4 दिन में आप, तुम मेरी सुनते नहीं हो, सुनेंगे हम। दूसरी बात जो सबको बहुत अच्छी तरह अपनी धारणा में लानी है, खुश रहना। अब सोचने की बात है कि अपने हाथ में खुश रहना, परिस्थितियां खुश रहने नहीं देती, समस्याएं खुशी को छीन ले जाती हैं, हमारे अपने संकल्प, हमारे अपने संस्कार हमें परेशान रखते हैं, बेचैन रखते हैं, ज्यादा सोचने की आदत कईयों में बढ़ती जा रही, बिना मतलब सोचते हैं ज्यादा, क्या सोचते हैं उनको भी पता नहीं चलता, ये सब हमारी खुशी को नष्ट करने वाले हैं। कैसे रहेंगे हम खुश? 2 ही विधि हैं। संसार में तो खुशी के शत्रु बहुत पैदा हो गए हैं। एक, रोज सवेरे प्रभु मिलन की खुशी से स्वयं को भरपूर करेंगे, केवल योग नहीं लगाएंगे, एक सुख मिल जाए आत्मा को, बाबा से प्यार भरी बातें करके खुशी के खजाने से भरपूर हो जाएं। योग को भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास में लाएंगे, ताकि मन परमात्म प्रेम में कुछ समय के लिए मग्न भी हो जाए, उसे प्यार भरी बातें करके खुशी भी बहुत ज्यादा भर जाए जीवन में, उसके पास बैठकर उसके वाइब्रेशंस भी आत्मा में समा जाएं। सब अभ्यास करेंगे, कल तो मैं हूं अमृत वेले, मैं आऊंगा आपके पास, कमेंट्री से योग होता है। इसके बाद मुरली, मैं आप सभी को ये होमवर्क देना चाहता हूं, रोज करेंगे, अलग डायरी बना लो, मुरलियों में खुशी और नशे की जो पॉइंट आती हैं उसे अलग मोटे अक्षरों में नोट करो, हिचपिच नहीं, ऐसा नहीं लिखना कि खुद पढ़ें और खुद लिखें और पढ़ा भी ना जाए, थोड़ा अच्छे मोटे अक्षरों में। आज मैंने एक मुरली रिकॉर्ड की, उसमें 10 बार बाबा ने कहा, बच्चे आएगी अब आपके पास वो मुरली 18 तारीख की है, 18 अक्टूबर, बच्चे जिसे तुम ढूंढते थे, जिसके लिए अमरनाथ पर तीर्थों पर जाते थे, वो सम्मुख बैठा है। मुरली सुन के छोड़ न दें, फील करें सम्मुख बैठा है। 10 बार आई होगी, वो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें पढ़ा रहा है, जिससे तुम मिलना चाहते थे वो सम्मुख बैठा है, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, कहते थे पतित पावन आओ दुख हरता आओ, अब वो तुम्हारे सामने बैठा है। 10 बार मैं भी देखा। ब्रह्मा बाबा उस दिन बहुत ज्यादा नशे में होंगे, क्योंकि शिव बाबा की मुरली और ब्रह्मा बाबा की स्थिति दोनों में बहुत ज्यादा मिलन रहता था। तो ऐसी जो बातें हैं उन्हें नोट करेंगे, रोज एक कर लो ज्यादा नहीं, और 50 ऐसी बातों का भंडार हो जाए। बाबा तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज दिलाने आया है, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। इसको अलग से लिख लो जरा, पढ़ लिया करें बीच बीच में। तो मुरली पढ़ने का या ज्ञान का मनन करने का या ज्ञान में फुल मास लेने का तरीका ये नहीं कि हम सारा दिन मुरली पढ़ते रहें। कई लोग ये सोचते हैं 10 बार मुरली पढ़ लो, समझ में चाहे कुछ ना आए, मुरली पढ़ने के बाद चाहे सारा ही भूल जाए, उसका महत्व नहीं। मुरली से हमने क्या सीखा, मुरली का हमें कितना नशा चढ़ा, क्या मुरली से हमें प्रभु मिलन का साथ साथ अनुभव हुआ, यह है मुरली का महत्व। मुरली जीवन दायिनी है, सुख दायिनी है। बाबा क्या करते थे, माया सुलाती है, मुरली तुम्हें जगाती है। हम जग जाएं रोज, ऐसे नहीं मुरली के समय सो जाएं, वो अलग बात है, पर आत्मा जग जाए। तो इस तरह यदि हम करेंगे तो हमें बहुत खुशी रहेगी। छोटी मोटी बातें इस खुशी और नशे के सामने छोटी प्रतीत होंगी। मैंने माताओं को देखा, गांव की माताएं, भोली माताएं, जिन्हें ज्ञान ध्यान का ज्यादा कुछ पता नहीं, एक ही संकल्प से मस्त रहती हैं, मुझे सुनाती हैं, बाबा मेरे साथ है, बाबा बैठा है, कोई चिंता नहीं करती। मैं सोचता हूं ये तो सबसे आगे निकल गई है, कोई चिंता नहीं। मैंने कहा बच्चे पोतरे, हाँ सब ठीक हैं, बाबा मुश्किल से तो मिला है, अब भी इन चिंताओं में रहे, और बच्चे संभालने वाले हैं, उनके बच्चों को मैं क्यों चिंता करूं, मैं देखता रह जाता हूं उन्हें। भोली माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा गहराई से नशा उतार लिया है जीवन में। मैं जब उनकी ये बात सुनता हूं कईयों की कि मैं क्यों चिंता करूं, बच्चे हैं ना अपने बच्चों की चिंता करने के लिए, अब मुझे किसी की चिंता नहीं करनी है। कई माताओं ने, मैं माताओं की बात कह रहा हूं, अपने को ऐसा मुक्त भी कर लिया है। तो हम सभी खुशी नशा सहज भाव धारण करेंगे। और एक चीज पर मैं आप सभी का ध्यान खिंचाता हूं, जो आप यहां से सीखेंगे बहुत अच्छी तरह और सदा सीख कर रखेंगे, हमें अपने मन को सेंसिटिव नहीं बनने देना है। सेंसिटिव माना नाजुक, सेंसिटिव सीधी भाषा में फीलिंग बहुत आना, जल्दी ही मूड बदलते रहना, जल्दी ही गुस्सा आ जाना, इसको इमोशनल भी कहते हैं, टू मच इमोशनल। तो बहुत नाजुक नहीं बनना है। किसी ने कुछ कहा और इरिटेट हो गए, चिड़चिड़ापन आ गया, जिन्हें कुछ बुरा बोल दिया तो फीलिंग लेकर बैठ गए, इससे क्या नुकसान होगा? जो बहुत इमोशनल और सेंसिटिव रहे हैं, एक नुकसान मैं देखता आ रहा हूं 2-3 साल से, इसलिए सभी को सावधान करता हूं, वो मानसिक रोगी बनते जाते हैं। क्योंकि जब मन बहुत सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है, तो चारों ओर की जो बैड एनर्जी है वो मन ग्रहण करने लगता है। हमें देना है पर हम ग्रहण करने लगते हैं निगेटिव एनर्जी को, इसलिए कुछ भी हो जाए मस्त फकीर बनकर रहना है। दादी जानकी को टाइटल देते थे बाबा ये जनक बेटा तो मस्त फकीर है, कोई चिंता नहीं। ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? सब बाबा के उस महावाक्य पे चिंतन करना, जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो रहेगा या नहीं? कुछ नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। तो हमें इसके लिए अपने को पहले से ही तैयार कर देना है कि हमारे साथ जाएंगे हमारे पुण्य कर्म, हमारी पवित्रता की स्थिति, जो हमने अलौकिक खजाने अपने अंदर भरे हैं वे, और जो कुछ बाबा के कार्यों में सहयोग दिया है वो बहुत बड़ा पुण्य है ना। सबसे बड़ा पुण्य वही है। तो हम अंतर्मुखी होकर अपने को देखेंगे, मुझे अपने में क्या चेंज लानी है। अंडरलाइन करें इस बात को, चेंज तो लानी है, अपने को परिवर्तन तो करना है। हम सबका स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। लेकिन ये लास्ट बात और आपके सामने रख देता हूं, मैं बाबा की दूसरी गहरी बात सुना देता हूं। ये तो कॉमन है हमारा स्लोगन स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, लेकिन बाबा का बहुत सुंदर गहरा महावाक्य है, विजय माला तो उनके गले में ही पड़ेगी जो स्व परिवर्तन करेंगे। जिनको जीवन में महान लक्ष्य है, कुछ भगवान मिला तो ऐसे ही नहीं चल रहे ढीले ढीले, कुछ करके जाना है, कुछ लेके जाना है भगवान से, संसार को कुछ देकर जाना है। ऐसी महान उमंगों में जो रहते हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि मुझे स्वयं में क्या बदलाव लाना है। बदलना तो है खुद को, बहुत लोग कहते हैं हमें खुद को बदलना, पर क्या और कैसे? जब तक इन दोनों का ज्ञान नहीं तो ये स्लोगन स्लोगन ही रह जाते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें सुना रहा हूं जिन पे आप ध्यान दें, और भी आप में अपने में कुछ परिवर्तन लाना हो आप स्वयं को देखेंगे। जितना हमारा स्वमान ऊंचा उठता है हमें अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरी का पता चलता है। अगर स्वमान हमारा ऊंचा नहीं है तो हम अपने को ठीक ही मानते रहेंगे। एक परिवर्तन जिसमें भी हो, सब में नहीं होती ये चीजें, ज्यादा सोचने की आदत जो बहुत खतरनाक है आजकल। बाबा ने कह दिया था, जब कहा था तब से ही मुझे याद रहती है ये बात, मैं क्लासेज में बहुत सुनाता हूं, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। दूसरा परिवर्तन, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, स्थिति खो देते हैं। स्थिति बहुत बड़ी चीज है, बातें बहुत छोटी चीज हैं। ये बाबा के सब थे। दूसरे, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। अपने बड़ेपन को पहचाने, इसको स्वमान कहते हैं। बातें बड़ी नहीं है, बड़े तो तुम हो। तीसरा परिवर्तन बोल। मुरली भी सुन चुके हैं बचत की, जब बाबा व्यक्त हुए और मधुबन छोटा सा था तो बहुत प्रैक्टिस कराई थी, जहां 50 बोल बोलने से काम होता हो वहां 5 बोल बोल कर काम कराओ, तो बोल की शक्ति बचेगी, वाचा की सिद्धि मिल जाएगी। इसलिए हमारे बोल कैसे हैं, ऐसे तो नहीं छोटे छोटे काम में हम लंबा लेक्चर कर देते हैं, सुनने वाला ही दुखी हो जाए। वही बात एक बार एक शब्द में बताई जा सकती है, भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो। कई लोग 10 मिनट लेक्चर कर देते हैं, तुम तो हो ही ऐसे, कभी नहीं सुधरोगे, अच्छे वरदान भी दे देते हैं, ये नहीं। थोड़े से बोल बोल कर ज्यादा काम कराना। बाबा ने तो बहुत बड़ी बातें भी कही हैं, मुझे याद है दीदी मनमोहिनी को कहा करते थे बाबा, बाबा मुरली के बाद दीदी मिलती थी और बाबा बहुत गुह्य बातें करते थे। कहा एक दिन आएगा तुम्हारा यज्ञ संकल्प शक्ति से ही चलेगा, जैसे बोल से चलाते हो। दूसरी बार कहा, ये बात मुरली में आ भी गई है वरदान में, या एक दो दिन में आ जाएगी, जैसे तुम सोचते हो कि जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, लेकिन तुम ये सोचोगे जैसे ही संपूर्णता के समीप पहुंचोगे, जो हम चाहेंगे वही होगा। सबसे बड़ी बात है संसार की, ये संसार का खेल कुछ महान आत्माओं के कंट्रोल में भी आ जाएगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो बोल हमारे कैसे हैं उसको बदल देंगे। रोब के बोल हैं, क्रोध के बोल हैं, इंसल्टिंग बोल हैं या श्राप देने वाले बोल हैं, हम इस देव देवियां हैं, हमारे बोल सुखदायी वरदान देने वाले होने चाहिए, दूसरों को प्रोत्साहन देने वाले होने चाहिए। चेक करेंगे अपने को, सूक्ष्म वृत्तियों में परिवर्तन। चौथा, किस किस के प्रति नफरत और ईर्षा है जीवन में, नष्ट कर रही हैं वो हमारी आंतरिक शक्तियों को, क्षमा दान दे दें, क्षमा याचना कर लें, बहुत सुखी हो जाएंगे। इन दो चीजों का प्रयोग बहुत सफल होता है, क्षमा दान क्षमा याचना। कराता रहता हूं मैं माताओं को छोटे छोटे प्रयोग। मेरी बच्ची, छोटी छोटी बच्ची का, 7 साल की बच्ची मुझे बहुत तंग कर रही है। तो 7 साल की बच्ची कैसे तंग करती है? एक ने तो कहा 3 साल की बच्ची मुझे बहुत मारती है। मैं कहा 3 साल की बच्ची की तो चोट भी नहीं लगेगी तुम्हें, उसका प्यार समझ लिया करो। नहीं, परेशानी होती है। मैंने इनको सिखाया, उनसे क्षमा याचना कर लो, जब वो सोई हो उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, 7 दिन किया, बच्ची शांत हो गई। तो नफरत, ईर्ष्या, छल कपट, दूसरे का पैसा हड़पने का संस्कार, स्वार्थ पड़ता, ये ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है। ब्राह्मण निर्मल सुखदाई, किसी से 1 पैसा लिया 2 दे दो। कई ब्राह्मणों में भी हो गई है ये गड़बड़, किसी का कुछ लेना नहीं है, हमें देना ही देना है। तो चेंज करेंगे अपने संकल्पों में, अपने बोल में, कोई सूक्ष्म पाप कर्म करते हो उसको पुण्य में बदलेंगे, और यहां आए हैं तो बदल के जाएंगे। अब लास्ट वो बात सुना देता हूं जो फरिश्ते की सौगात दीदी ने दी है। वो सौगात कैसी रहेगी आपकी, वो सुन लें आप। 10-12 साल पहले की बात है, अव्यक्त बाप दादा शांति वन में मुरली चला रहे थे, और मुरली के बीच में ही बाबा ने बोला, आज वतन में एक सीन इमर्ज हुआ। वो सुनाते हैं, 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा दीदी मनमोहिनी और एक ये गुलजार बच्ची। बाबा ने क्या किया, रंग बिरंगे हीरे हाथ में लिए, उनका पाउडर बनाया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों के लाइट के शरीर से रंग बिरंगी चमकीली किरणें फैलने लगी। यह है हमारी फरिश्ता ड्रेस। तो अभी अभ्यास करेंगे और इसी अभ्यास के साथ समाप्ति। रेड लाइट प्लीज। चलो बाबा को देखो, लाल लाइट करें भाई। बाबा ने रंग बिरंगे हीरो का पाउडर बनाकर मेरे ऊपर छिड़क दिया, मैं चमकीली ड्रेस में आत्मा विराजमान। मैं तेजस्वी फरिश्ता, संसार के कल्याण के लिए अवतरित फरिश्ता हूं। अपना स्वरूप देखें कितना सुंदर, डिवाइन। अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ऊपर ज्ञान सूर्य, उनकी पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ में समा रही हैं। और मेरे चारों ओर बन गया है बहुत सुंदर डिवाइन आभा मंडल, पवित्रता का घेरा। ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। मैं फरिश्ता हूं, इस तेजस्वी आभा मंडल के बीच में। ओम शांति।